श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और रूपानुग वैष्णव के ऊपर में कोई भी कटाक्ष पात किया तो उनकी जीभ को काट करके अलग कर दिया, उनकी बोती को बंद कर दिया। इफ एनीवन टोल्ड एनीथिंग अगेंस्ट अवर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और अबाउट अगेंस्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अगेंस्ट भक्ति, अगेंस्ट कृष्ण, ही एट वंस टूक हिज सोर्ड एंड कट ऑफ देयर टंग एंड स्टॉप देम टू डू सो। आई एम टेलिंग अबाउट दिस थिंग। हम लोग के गुरु पारपद्मनाथ जी बहुत ही बाग्मी थे, बड़े कुशल वक्ता थे, मितंच सारंच बाग्मिता, थोड़े ही शब्दों में अपने सारे विचारों को प्रकाश कर सकते थे। इन फ्यू वर्ड्स, सेलेक्टेड वर्ड्स, ही यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज होल थॉट्स। ये बड़े भारी दार्शनिक थे, ही वॉज वेरी ग्रेट फिलोसफर। प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हैज गिवन हिम ऑल द बुक्स ही कलेक्टेड अबाउट ब्रह्मसूत्र, वैदांत, वेदांत एंड ऑल द बुक्स ही गिव टू और गुरुदेव। हमारे गुरु जी को उन्होंने सारे वेदांत की पुस्तकों को उन्होंने दिया कि तुम बहुत बड़े धारी वेदांत विद हो, इसलिए तुम्हारे अतिरिक्त और कौन इसको पढ़ सकेगा, अध्ययन करेगा, इसलिए तुमको मैं दे रहा हूँ। इन्होंने सारी पुस्तकों को श्री प्रभुपाद गेव हिज ऑल द बुक्स रिगार्डिंग फिलोसफी वेदांत, ही गेव इट टू और गुरुदेव एंड ही स्टडी। वी डोंट नो व्हेन ही यूज्ड टू स्टडी, हम लोग नहीं कह सकते थे वो कब पढ़ते थे, कब क्या करते थे। हम लोग तो उनको केवल ऐसे बैठे हुए देखा करते थे, सुनते हैं कि रेलगाड़ी में या कहीं जब जाते थे तो वहीं पढ़ने नहीं, कैसे पढ़ते थे। ऐसी पुस्तक यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है जो हमारे संप्रदाय में और जगह, यहाँ पर सारी पुस्तकें हैं, किंतु उनमें से वेरी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब में लिखा हुआ रेड लाल काली से उन्होंने लिख रखा है। हमने उज्ज्वलिन मणि देखा, भक्ति रसामृत सिंधु और जितने भी हमारे संप्रदाय के ग्रंथ हैं, और की तो मैं बात क्या कहूँ, कृष्णदास का विराट गोस्वामी की जो पुस्तकें जो है वो सबको उन्होंने देखा है, उसमें लाल मार्क करके रखा है। बड़े अच्छे सुंदर लेखक भी थे, जैसे उनकी कलम चलती थी वैसे उनका मुख भी चलता था। कोई भी व्यक्ति उनके उनको जबकि उनसे तर्क वितर्क करने के लिए आता तो अपनी पैनी बोली से, पैनी कलम से ऐसा उसे निरुत्तर कर देते थे जो एकदम चुपचाप रह जाता था। एक समय की बात है, मैं गया था उनके साथ प्रचार में मेदिनीपुर में, हमारे साथ में पूज्यपाद बामन महाराज जी और परम पूज्यपाद दीनबंधु बाबा जी थे, हम लोग तीन आदमी थे और वहाँ के कुछ लोग थे। एक समय कोई आदमी वहाँ पर आए, रिटायर्ड वो जज थे, आकर के कुछ तर्क विचार हुआ, मैं अधिक दूर विस्तार पूर्वक नहीं कहूँगा, उसका जो सार है वही बतला रहा। उन्होंने आकर के ब्रह्म तत्व पर विचार करने लगे, उन्होंने कहा जो ब्रह्म आनंदमय है। उन्होंने गुरु जी ने उत्तर दिया, हमारा वैदिक ब्रह्मवाद और आधुनिक शंकर के द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद एक नहीं है, मायावाद एक नहीं है। वेदांत में अर्थात हमारे वेदों में उपनिषदों में जिस ब्रह्म की स्थापना की गई है वो तो ब्रह्म की अंगी कांति है अथवा ज्ञान है, वो भी परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज है, यथार्थ में ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी ने जो कुछ कहा, फर्स्ट शंकराचार्य हैज टोल्ड अबाउट अद्वैतवाद और मायावाद, क्वाइट फॉल्स एवरीथिंग, इट इज नॉट वैदिक ब्रह्मवाद। ब्रह्मवाद, उन्होंने कहा जी ब्रह्मानंदवाद तुम क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, यदि ब्रह्म निर्विशेष है, ब्रह्म का ही रूप कोई नहीं है, ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं है, निर्विशेष और रूप निर्गुण निरंजन अनादि निशक्ति निर्गुण तुम कह रहा है, तो ब्रह्म कैसे आनंदमय हुआ। हम कहते हैं कि वो पखानामय और दुर्गंधमय है, ही इज लाइक ए स्टूल नॉट आनंदमय। ही विल क्लियर इट, वेरी गुड पॉइंट। ही ट्राइड हार्ड सो मच, उसने बहुत ही चेष्टा की जब ब्रह्म आनंदमय है। गुरुजी ने कहा तुम आनंद किस लिए कह रहे हो, यदि कोई मधु है और मधु में चींटी उसको चखने के लिए गई और उसी में लटपट होकर मर करके उसी में मधु ही बन गई, तो फिर मधु का स्वादन नहीं कर सकती, और वो चींटी फिर आकर के नहीं कहेगी जय मधु खूब टेस्टफुल और मधुर है। वैसे ही यदि कोई पैखाना बन जाए तो पैखाना बन जाने के बाद में उसे दुर्गंध भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं कि वो पैखानामय और तुम्हारा आनंदमय दोनों एक ही है। हजार चेष्टा की है उसको साबित करने के लिए जो ब्रह्म आनंदमय है, किसी प्रकार से वो साबित नहीं कर सका। गुरु जी ने कहा ये सब दुर्गंधमय है और वो आनंदमय नहीं है। उसके जिस विषय को उठाए उसका खंडन करके काट दे गुरु महाराज जी, जब वो निशक्ति है। और उन्होंने कहा तुम कहते हो सर्वम फलितम ब्रह्म, यह गलत है तुम्हारा कहना। क्यों, उन्होंने कहा जो सर्वम फलितम ब्रह्म तत्तम असि आम ब्रह्मास्मि जो कहते हो, तो एक तरफ तो तुम कहते हो कि सर्वम फलितम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है, फिर जगत को तुम झूठा क्यों कहता है कि जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही वो ना पड़ा क्यों कहता है, यदि सभी कुछ ब्रह्म है जो कुछ हम देते हैं तो ये मिथ्या कैसा हो गया। एक भी उत्तर नहीं दे सका, लौट करके चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बार कैसे संप्रदाय की रक्षा की गुरु जी ने, निम्बार्क संप्रदाय के यहां एक व्यक्ति ने लिखा, उसके जो विद्वान है अब तो वो रहे नहीं, उन्होंने लिखा चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीरी के शिष्य थे, एनी पर्सन डिवोटी ऑफ शंकर निम्बार्क संप्रदाय, ही रोट इन हिज पेपर मैचिंग दैट चैतन्य महाप्रभु वाज द डिसाइपल ऑफ केशव काश्मीर। उन्होंने कहा गुरु महाराज जी इसको सुनकर के बड़े क्रोधित हो गए और साथ ही साथ उन्होंने मुझको कहा कलम उठाओ, और हमको उन्होंने डिक्टेशन आरम्भ दिया। उन्होंने कहा कि जगत में निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, यह झूठा कल्पित निम्बार्क है, बल्कि चैतन्य चैतन्य इत्यादि ग्रंथों में यह लिखा गया है केशव काश्मीरी चैतन्य महाप्रभु से पराजित होकर उनके द्वारा कृष्ण मंत्र ग्रहण करके वहां से आया और यहां पर मथुरा में वो अपना भजन साधन करता था सारा तरफ लिया। महाप्रभु जी ने कहा विद्या का कार्य ये नहीं है कि सबसे तर्क वितर्क करे, विद्या का कार्य है वो भक्ति, भगवान की भक्ति करे, इसी में जीवन सफल है। इसलिए सब लोगों को भगवान का भजन करना ही एक विद्या का चरण सार है। उन्होंने कहा ये निम्बार्क नाम का कोई संप्रदाय नहीं, और किसी व्यक्ति ने अपने भाष्य में या कहीं भी निम्बार्क शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है, उनका कोई वेदांत का ग्रंथ नहीं है, एक जाली पारिजात भाष्य उन्होंने लिखा वो भी जालियात है, वो भी ठीक नहीं है। साथ साथ में उन लोगों ने 2 लाख या कितने लाख रुपए का मानहानि मथुरा कोर्ट में किया, किंतु गुरुजी ने कहा और जिन लोगों के वकील के पास में वो गए उन्होंने कहा देखो गड़बड़ मत करना, कहीं केंचुआ को खोदने जाकर के कहीं वहां से विषधर सर्प ना आ जाए। तुम लोग प्रतिप्रज्ञान केशव महाराज को नहीं जानता, वो बड़े बड़े तेजस्वी पुरुष है, तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे, उल्टा उनको देना पड़ जाएगा। इसलिए वो लोग केस नहीं किया और सुलहनामा करने के लिए राजी हुआ। इसी प्रकार से उनकी बोलती बंद की। शाउलीर सहजिया वो लोग प्रभुपाद के विरुद्ध लिखा, जो गौड़ीय मठ वाले रस नहीं जानते हैं कि रस किसको कहते हैं और वो नीरस हैं। वो लोग रासलीला इत्यादि का अध्ययन और अध्यापना इत्यादि नहीं करते हैं। सुनकर के गुरु महाराज जी बड़े बिगड़े और उन्होंने 5 निबंध प्रबंध दिया और उसी में उनके होश उड़ गए। उन्होंने केस किया, अंत में केस में भी उनको हार मानना पड़ा और गुरु जी के चरणों में शरणागत होना पड़ा। फिर उन्होंने संकल्प किया, आज से इनके विरुद्ध में कभी कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरह से जब जब हमारे संप्रदाय के ऊपर में ऐसी कुछ बातें हुई, गुरु जी उसी समय उठ खड़े हुए और हजारों कलम की मुख से उन्होंने सर्वत्र उन्होंने इसका प्रचार किया। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं जिसमें कि हमारे परमाद्वैती महाराज जी ने बतलाया, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, जब तक जगत में मायावाद रहेगा, अद्वैतवाद रहेगा, निर्विशेष ब्रह्मवाद रहेगा, तब तक भक्ति का प्रचार शुद्ध रूप में नहीं हो सकेगा, भक्ति के लिए विघ्न बाधा रहेगा। हमारे गुरु जी भी ऐसा करते थे और उन्होंने सर्वदा इसका खंडन किया मायावाद के विचारों का। उन्होंने जीव गोस्वामी के युक्तियों को अवतारणा कर मायावाद का हजारों रूपों में उन्होंने खंडन किया। उनके लेखनी से जहां कोई प्रबंध निकलेगा उसमें मायावाद का जरूर उल्लेख रहेगा और उसका खंडन करते थे। श्री प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की धारा में उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए मायावाद में उन्होंने कहा, मायावाद एक धोखा है। आज तक बहुत से मायावादी आचार्यों को वैष्णव ने पराजित किया और उनको वैष्णव धर्म में दीक्षित किया, किंतु वैष्णव धर्म में दीक्षित कोई भी व्यक्ति आज तक किसी दूसरे धर्म में दीक्षित नहीं हुआ। रावण पक्का मायावादी था क्योंकि शक्ति को हरण करना चाहता था। कंस महान अद्वैतवादी था, वो शक्ति को कुछ न करके कृष्ण को मारना चाहता था। ये सब मायावादी हैं। हिरण्यकश्यप मायावादी था, बहुत बड़े भारी विद्वान थे वो लोग वेदों के। रावण वेदों का बड़ा भारी आचार्य था, 10 मुखों से वेदों को वो उच्चारण करता था, किंतु सीता जी को चुरा लाया, उनके शक्ति का अपहरण किया, वो निर्विशेषवादी था। गुरु जी के ऐसे सुंदर सब विचार और उसको रामचंद्र जी ने उसको ध्वंस किया था। इस तरह से हम देखते हैं कंस को भी कृष्ण ने ध्वंस किया। इस प्रकार से हम देखते हैं प्राचीन जितने लोग हारे हैं समाप्त ब्राह्मणों के, उन शंकराचार्य से है, कोई भी वैष्णव से विवाद उन्होंने नहीं किया। नवद्वीप में गए और वहां से लौट आए, नवद्वीप में कुछ प्रचार नहीं कर सके, किसी भी वैष्णव के साथ में उनका विवाद नहीं हुआ है। असल में शंकर जी शंकर थे, साक्षात शंकर भगवान के आदेश से मायावाद का तात्कालीन प्रचार करने के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने वैष्णव के लिए एक भित्ति बनाई, इसीलिए उन्होंने लिखा, भज गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए ऊपर से यद्यपि मायावाद का प्रचार किया किंतु भीतर से वो पक्के वैष्णव थे, वैष्णवानां यथा शंभु। इस तरह से हम देखते हैं कि शंकर संप्रदाय के जितने लोग हैं वो लोग में ऐसे बड़े बड़े पंडित लोग या तो मारे गए विष्णु के हाथों से या वैष्णव धर्म में पुनः दीक्षित कर लिए गए, किंतु आज तक वैष्णव में से कोई भी व्यक्ति मायावाद के द्वारा हरा नहीं और उनको हराया ही और उनको अपने मंत्र में दीक्षित किया। कोई भी आज तक वैष्णव मायावाद में संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुआ। इस प्रकार से उन्होंने सत्ययुग से लेकर के कलयुग तक के समस्त इतिहास उन्होंने दार्शनिक इतिहास और इस तरह से इतिहास अवतारणा कर इस चीज को सत्य रूप में करने की चेष्टा की है। उन्होंने केवल यही नहीं, दर्शन ही नहीं, रस साहित्य में हम देखते हैं उन्होंने अपने गुरु जी के लिए एक आरती लिखी है जिसको मायापुर के आचार्य जी ने इसका देख करके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए, भाषा पर मुग्ध हो गए, और उन्होंने अंतिम लाइन जिसमें गुरु जी का नाम है उसको छोड़ करके और उसमें चालू कर दिया आरती, जिसको हम लोग आरती करते हैं। बहुत ही सुंदर भक्ति विनोद धारा, ये क्या है, जलशंख धारा, ये भक्ति विनोद जी की धारा है। पांच प्रदीप, ये क्या है, पंचरस की सेवा। इतनी सुंदर व्याख्या, उसमें दर्शन और रस दोनों मिले हुए, ऐसा विचित्र मिलन बहुत कम देखा जाता है। उन्होंने राधा कृष्ण जुगल की आरती लिखी, इतना सुंदर जो आज तक किसी भी आरती में नहीं देखा गया, मंगल आरती का, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखित कृष्ण भावनामृत और गोविंद लीलामृत का सारा रहस्य ही उसमें बड़े रहस्यिक ढंग से उसमें उन्होंने परिवेशन किया है। जो कोई भी व्यक्ति, रसिक व्यक्ति, भाव भक्ति देखेगा तो उसे बिना मुग्ध हुए रह नहीं सकता। उसके एक एक शब्दों में न जाने क्यों कौन से भाव सब छिपे हुए हैं। उन्होंने राधा विनोद बिहारी अष्टक एक लिखा संस्कृत में, संस्कृत के भी विद्वान उन्होंने लिखा, उसके कितने गुण रहस्य हैं, जिसका पहला श्लोक ये है, क्या है, राधा चिंता निमेशेन जस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रह। मैं वंदना करता हूं किनकी, क्या कहा, राधा लिंग बंद करते खा रहे, अच्छा बंद कर, राधा चिंता निमेशेन जस्य कांति विलोकिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। फर्स्ट इसका ये श्लोक है, उसके बाद में दूसरा बतला रहे हैं। मैं राधा लिंगित विग्रह को मैं प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एक भी तक नहीं पा है, कृष्ण चिंता क्या, राधा चिंता निवेशेन। सब लोग ये जानते हैं कि कृष्ण हमारे आराध्य हैं, कृष्ण के विरह में गोपियां रोती और तड़पती हुई उनको खोजती हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की धारा का यह विचार नहीं है, कृष्णचंद्र स्वयं राधा जी के लिए ढूंढे और उनके लिए रोजो, राधिके तुम कहां हो। इसलिए कृष्ण राधा की चिंता में निमग्न होकर के अपने श्यामल कांति को छोड़कर के गौर कांति के द्वारा आच्छादित हो गए। ऐसे जो आच्छादित जो कृष्ण है, राधा अलिंगित जो विग्रह है, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। दूसरा उसका यह है क्या, क्या भेदाभेद प्रकाशकम, मुझे याद नहीं दिया। उसमें उन्होंने अपने जितने विचार हैं अपने संप्रदाय के, हमारा विचार अचिंत भेदाभेद है, कृष्ण के साथ भगवान के साथ में हमारा भेद भी है अभेद है, किस रूप में भेद और किस रूप में अभेद, इसको चैतन्य महाप्रभु जी ने सबसे पहले हमारे सनातन इत्यादि गोस्वामियों को दिया, जिसको पीछे से शिलाजीव गोस्वामी ने और श्री बलदेव विद्याभूषण ने इसको प्रकाशित किया। इसके पहले शंकराचार्य जी ने बतलाया जब जीव ही कृष्ण है, ये जगत मिथ्या है। रामानुज ने बताया विशिष्ट विशिष्टाद्वैत बात, एक ही वस्तु है जगत और जीव, उसका विशेषण मात्र है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। और आचार्यों ने बताया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जीव गोस्वामी ने इसको इस रूप में प्रकाशित किया, एकम एव परतत्वम स्वाभाविक अचिंत सत्या जीव प्रधान चतुर्धा अवशिष्यते, और उसका उपमा देकर के बताया एक ही परतत्व है, अचिंत शक्ति के प्रभाव से वो परतत्व सूर्य स्वरूप और उसके अवतार समूह जीव और प्रधान माया के रूप में वो प्रकाशित है, फिर भी उनमें भेद भी है अभेद, किंतु मन की बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। ये हमारे गुरु परंपरा के ग्रंथों के अनुसार में इसको समझा जा सकता है, जिसको अन्य वाणी कहते हैं उसके द्वारा हम इसको इसको समझ सकते हैं, मन की बुद्धि के द्वारा उसको नहीं समझा कि अचिंत भेद आवेद किसको कहते हैं। इसके पहले किसी भी आचार्य ने इसको नहीं कहा अचिंत भेद आवेद, किंतु पीछे से सब आचार्यों ने इसको माना, मध्वाचार्य ने भी इसको माना है अचिंत भेद आवेद, और लोग मानने के लिए बाध्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का यह विचारधारा हमारे गुरु जी ने श्री प्रभुपाद के बाद में जगत में उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने ये कहा सत्य सेवक संभोगे द्वैर भेद तो भवे विप्रम में तु सर्वस्य भेद सदा विवर्धते, और चिल्लीला मिथुन तत्व भेदा भेद अचिंतकम शक्ति शक्ति मतोरक ऐक्यं जुगपत वर्तते सदा इत्यादि। बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा, अपने यहाँ पर सफेद कृष्ण क्यों, राधा जी सफेद कृष्ण सफेद, गुरु जी ने इसी के उत्तर में ये सब लिखा। जो रसिक भाव नहीं है नहीं समझ सकते, उन्होंने कहा ये राधा जी की चिंता करते 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 कृष्ण तन्मय होकर हो गए, और उसी समय कृष्ण का यह रूप श्याम रूप आच्छादित हो गया राधा कांति के द्वारा। ये इमली तला की घटना है, रासस्थली के बाद में कृष्ण रासस्थली से अंतर ध्यान हो जाने के बाद में कृष्ण इमली तला में थे श्रृंगार पट के बाद में, और कृष्ण ही खोज रहे हैं राधा जी को जो कहाँ गई, और चिंता करते 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 गौरवर्ण के हो। ये सब पुराणों में है, कोई कह रहे थे जैसे इसका उल्लेख कहाँ है, इमली तला का प्रसंग यहाँ पर वर्णन है शायद पद्म पुराण में, वहां पर इसका ये है, और बृहद भगवतामृत में सनातन गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है। साथ साथ में श्री कृष्ण गदास को विराट गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत में इसका वर्णन किया जैसे श्याम गौर हो गए। विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की स्वप्न विलासामृत अष्टक में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसलिए ये गुरु महाराज जी का यह तत्व और ये उन्होंने वर्णन किया पूर्ण रूप से ठीक है। मैं इनके संबंध में बहुत कुछ और भी कहना चाहता था, किंतु मैं समय अभाव के कारण और अपने स्वास्थ्य के कारण मैं नहीं बोल सका, पीछे से धीरे धीरे इसको हम बोलेंगे। हमारे रामचंद्र जी अंग्रेजी में थोड़ा सा इसका एक हिंट दे देंगे, जैसे ये लोग समझ उठ करके खड़े होकर
महाराज इज क्वाइट बेनिवोलेंट ओवर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। ही स्टार्टेड हिज लेक्चर विद अ स्टेटमेंट दैट ही विल स्पीक थॉरली इन हिंदी, but I found in between he kept on giving his translation also to the English speaking people. This shows that how merciful he is for them also. Anyway, when he came into flow of his lecture, and he is quite natural when he speaks in Hindi and gives his lecture, so when he became natural in his lecture and he started speaking with great emotions about his Guru Maharaj, then he became totally Hindi speaking. At that time he was telling, I am not starting his lecture because in his starting lecture he gave me translation into English and the time is also less, so I will speak only a few things which are most important. Maharaji was saying that he is explaining here that how his Guru Maharaj was, he dedicated his life to serve his Guru and Parampara. And he saved his parampara from many, many problems. The most of the thing is that other Mayavadi people, when they used to come, and his Guru Maharaj used to give befitting reply to them. This was his main characteristic. He said that, of course it is true, like Srila Prabhupada, as Prabhupada said, that so far Mayavad stays, it is difficult for bhakti to develop. In order to serve his Guru Maharaj, he always tried to eradicate Mayavad. Maharaj was saying, once upon a time, there was a retired judge. At that time, his Guru Maharaj said, it's false what you say, that Brahma is Anandamaya. He gave an example that if an ant goes near to honey, and in order to taste it, but instead of tasting it, it gets into it, drenched into it and die into it, and then it mixes with honey and becomes honey. It cannot tell about taste of honey. It cannot come out and say taste of honey. Similarly, you explain your Mayavad like this, that you go to Brahm, you become Brahm, and then you come back to say what is Brahm and it is Anandamaya. Your Brahm is like a stone, you go into a stone, you get absorbed into a stone, die into it, you cannot taste it, you cannot explain it, and now you say it is Anandamaya, like that. This was the befitting reply his Guru Maharaj gave to that retired judge. Then Maharaj was explaining, once upon a time there was a person from Nimbarkacharya Parampara. He claimed that Srila Mahaprabhu was a disciple of Kashmiri Pandit, Keshav Kashmiri. And at that time, Maharaj was saying that his Guru Maharaj called him and said, write down, I dictate you, write down. And what he wrote, there was no any person in the name of Nimbarka. It is a false thing. Nimbarka, there is no any parampara called Nimbarka. You write. Nimbarka. You said Nimbarka is, there is no any person Nimbarka Chare. So you write down. And Mahaprabhu was, he defeated Keshav Kashmiri. And then Keshav Kashmiri, after being defeated from Chaitanya Mahaprabhu, taking initiation, went to Vrindavan and started doing his bhajan. This was the fact. Then those people of Nimbarkacharya, that person, he made a claim on Guru Maharaj, Abraham Guru Maharaj, for rupees 2 lakhs, that he, against defamation. When he went to his vakil, lawyer said, you want to fight against Keshavji Maharaj, you will be again defeated. He is himself a very good vakil. You should not fight against him. And finally, when no lawyer came up to profess against him, then they withdrew their case and had a compromise. Similarly, Maharaji was saying that some sahajiya, they wrote against Srila Prabhupada's authenticity. They said that disciple in the line of Srila Prabhupada, they are not into Ras Tattva. Why? They don't talk about, they don't discuss about Ras Leela and all. They are always absorbed into Siddhanta, that's all. Then he came, he gave dictation of 5 essays, and those essays showed that how, what is the real philosophy of Srila Prabhupada. And when those essays were written, these sahajiyas were defeated, badly defeated, and they surrendered to Param Guru Maharaji. Maharaj was saying that Param Guru Maharaj used to say that Mayavad is a very big bluff. What is Mayavad? It is a bluff. It is found no one has turned a Mayavadi. No Vaishnava has converted into Mayavadi. Though it has been seen, many Mayavadi has converted into Vaishnava. But no Vaishnava is converted into Mayavadi. What is the proof? Maharaj was explaining, that is Gurudev said, Hiranyakashyap, Kans, Raman, they were the biggest Mayavadis. Why? So some Mayavadis were killed by Lord and they got mercy of Lord that way, and some Mayavadi converted. So those who were killed, Maharaj was explaining, were Ravan.
They were
Brahmavadi. And Mayavadi. You are explaining that those who were these Raman and all, they wanted to enjoy prakriti of Lord. This was their belief, that there is no Lord, Lord has no form, and they should enjoy all the nature of Lord. And these were Shukdev Goswami and Sanak Sanandan, four Kumars and all, they were Brahmavadis. And finally they came, they became Vaishnava. And many other Prakashanand demons were killed. This, and hence Maharaj was saying that his Gurudev established step by step and with great many proof that how Mayavadis were converted into Vaishnava by the strength of Vaishnava, and he thus established the strength of Vaishnava. Maharaj was explaining the most important thing in the later part of his speech, that some of the poems and bhajans written by his Guru Maharaj, they are splendid. He was explaining that his Guruji has written one aarti. In that aarti, he has explained a very, very interesting mingling of Ras Tattva and Siddhant, where he is explaining how to do worshipping, and he is comparing Panch Pradeep with five Rasa and all. Maharaj was explaining, if we go through those aartis, we will find it is each and every word of this aarti is full of Ras as well as Siddhant. Then Maharaj was saying that Radha Krishna Yugal Mangal Aarti was written by his Guru Maharaj. And this is such a nice aarti that it has been taken for doing aarti in the morning also. It contains the gist of Krishna Bhavana Amrit and Govind Leela Amrit, Maharaj was explaining. Then he was explaining that some of the verses which is in Sanskrit, his Guru Maharaj has written one poem or bhajan, and he was explaining Radha Chinta. I still don't know that verse. Maharaj was explaining that I bow down to Krishna who is enveloped by Radharani. And if we say Mahaprabhu, he is the same form. Therefore the color is changed. Being enveloped by Radharani, so color is changed. Then Maharaj was explaining that this poetry in Sanskrit he wrote because in his math and mandir, Guru Maharaj established Krishna in white complexion. The reason for this was given in this poem. He says that in Imli Tala Leela, Krishna was thinking about Radharani, deeply absorbed and into it. When he was absorbed into Radharani, what happened that the complexion enveloped him and he became white. So when we see here Krishna white means Krishna in deep absorbed being thought of Radharani. Maharaj was saying mostly it is seen outside that people are worshipping Krishna, but in our Gaudiya Parampara it is not something like this, that gopis are waiting for Krishna, gopis are restless for Krishna. He says no, our Gaudiya Parampara says that Krishna is in otherwise anxious for gopis and Radharani. So that thought has been developed and propagated by Guru Maharaj. I think I have been already restricted to speak 5 minutes and I have crossed that limit.
One thing I want to tell
सत्यानंद गोस्वामी जी मोबाइल श्रृंगार बढ़ते नवदीप चरण के बारे बड़े सारे विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले ये कहा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मध्य संप्रदाय की शाखा नहीं है और हम लोगों को मध्य संप्रदाय से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोग ब्रह्ममात्र गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय नहीं है। हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है जिसके प्रतिष्ठा श्री चैतन्य महाप्रभु है और हम लोगों से मठाचार्य का कोई संबंध नहीं। बलदेव विद्याभूषण जी मध्य संप्रदाय के ही व्यक्ति थे। वो हम लोगों के संप्रदाय से प्रभावित होकर के उन्होंने दोनों को मिला करके और मतों को यहाँ पर बीच में खड़ा कर दिया असल में मध्वाचार्य से और उन संप्रदाय से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। यदि गुरु जी उस समय नहीं होते तो उस समय चारों तरफ में यहाँ वृंदावन के जितने भी गोस्वामी लोग हैं कुछ को छोड़कर यहाँ तक कि राधाकुंड के सहजिया लोग नवदीप के सहजिया लोग और सभी लोग इस पक्ष में थे। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है और वही इसके मूल आचार्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहीं 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 कहा है जो लोग ऐसा कहते हैं वो कली के क्षण हैं, वो भंड हैं, उनके विचार ठीक नहीं हैं। जिसको हमारे कवि कर्णपुर जी ने जिस विचार को हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने सत्क्रिया सार दीपिका में कहा है, गुरु परंपरा दिया है, उसी को हमारे कवि कर्णपुर ने दिया है, उसी को बलदेव विद्याभूषण ने दिया है, विशेष करके जी गोस्वामी ने अपने सर संदर्भ में इस चीज़ को स्थापना की वृद्ध वैष्णव इत्यादि के द्वारा नाम लेकर के परंपरा के द्वारा मध्व और उनकी परंपरा के जो व्यास राय व्यास तीर्थ सबका नाम दे करके कहा कि हम उनके अनुगत हैं, उनके विचारों को हम ग्रहण करते हैं। महाप्रभु जब दक्षिण में गए कहीं भी कृष्ण की उपासना नहीं देखी, केवल उडुपी में कृष्ण की उन्होंने प्रतिष्ठा देखी और देकर के भाव में विरोह करके नित्य करते करते जमीन पर लोटपोट करने लगे और उन्होंने मथन जो करने वाले जो कृष्ण मथन दंड के साथ में उनको देखा जे यही कृष्ण के स्वरूप को ग्रहण करते हैं, इसलिए उस संप्रदाय के अंतर्गत उन्होंने वो हुए। ये बाई चांस नहीं, मथाचार्य मथेंद्र पुरीपाद ईश्वर पुरीपाद और इसके बाद में अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु जी और सब जितने भी हैं जितने भी पूरी लोग हैं ये सब उसी के अंतर्गत हैं, उसी संप्रदाय के अंतर्गत। अद्वैताचार्य भी ईश्वर पुरीपाद जी के मथाचार्य माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य हैं। इसी तरह से वो जो गदाधर पंडित जी के गुरु जी पुंडरीक विद्यानिधि उसी संप्रदाय के अंतर्गत है, इसलिए बाई चांस ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भारतीय संप्रदाय के मायावादी सन्यासी नहीं है, मध्वाचार्य ने भी तो सन्यास लिया अद्वैतवादियों से, किंतु उसके गुरु को भी अपने गुरु को भी अपने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित करके और उनको भी अपना शिष्य बना लिया। महाप्रभु जी ने ऐसा ही किया था। इस तरह से हम विचार करके देखते हैं तो ये मध्व संप्रदाय की हम लोग शाखाएं इसमें कोई हानि नहीं है। कृष्ण राम और महाप्रभु संप्रदाय की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य केवल मात्र नहीं है, भक्त नहीं है, इसकी तो प्रतिष्ठा उनकी शक्ति है या उनके आचार्य लोग करते हैं। महाप्रभु केवल आचार्य नहीं, वो संप्रदाय के सहस्त्र अधिष्ठात्री देवता है, उनके आराध्य है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु से संप्रदाय आती है, ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इस चीज को हमारे गुरु जी ने तरह तरह से एक अचिंत भेदाभेद एक ग्रंथ लिखा, हम उसको प्रकाशित करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही उसमें सुंदर ये सब पॉइंट दिए गए हैं कि हम लोग मध्व संप्रदाय की शाखा के रूप में किस रूप में है उसमें दिया है। इस प्रकार से हमारे संप्रदाय की तरह तरह से उन्होंने रक्षा की है। हम उनके चरणों में आज सत बार दंड प्रणति करते हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हम लोगों के अंदर में यही तेजस्विता दें, ऐसी शक्ति दें जो उनके विचारों को हम लोग जगत में प्रचार कर सकें और भक्ति का हम लोग प्रकाश कर सकें। यही कहा करके अपना वक्तव्य में समाप्त Mahaprabhu Parampara probably, he said that this Gaudiya Parampara does not belong to Madhva Charya Parampara. It's originated by Chaitanya Mahaprabhu. But Maharaj was saying that this was wrong. Our parampara is from Madhva Charya Parampara, has been established by Sri Jeev Goswami, Sri Kanpur and others, even Bhakti Vinod Thakur and Gopal Bhatt Goswami. They have accepted this all Guru Parampara, which is coming from Madhva Charya. And Sri Bhakti Vinod Thakur ji has said that who don't accept it, they are associates of Kali. Kali ke char hain, those who don't, spies, char means those who live with him, they are spies of Kali. Maharaj said that Guruji has written a book named Achintya Bhedabhed, and probably it will be published in magazine very soon, in which he has established all this, that what is our real parampara. Chaitanya Mahaprabhu established a new parampara is not a very important point. Chaitanya Mahaprabhu was in a certain dhara, and the rasa that he has given is the most important thing. So he was explaining that we should understand that we should not be misguided. And Maharaj in end, the most important thing said, we pray to Param Guru Maharaj today that as he was doing, he should give us also strength, so that we should also powerfully be able to repel and smash all such bogus siddhant, and should be able to propagate real and true bhakti. Gaur Premanande.